Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो पिछले हफ्ते की तरह आज भी हमारी अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमने कुछ बातें जो है वो मौलाना साहब की क्लास के बारे में आपसे करनी है। एक तो ये कि मौलाना साहब ने तो पहली क्लास के अंदर आप लोगों को मदारिस की तारीख के बारे में बता दिया था, और कुछ जो है वो मदरसे के स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया था। लेकिन फिर हमने उनसे मजीद दरख्वास्त करी कि आप हमें कुछ और भी बताएं, मदरसे के अंदर क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, दारुल उलूम के अंदर जो कि मदरसे की ही मोर एडवांस फॉर्म होती है, यूनिवर्सिटी लेवल का जो मदरसा होता है ना, उसको दारुल उलूम कहते हैं। जैसे स्कूलों के अंदर होता है कि भाई फर्स्ट टू टेंथ ग्रेड जो है वो स्कूल स्कूल कहते हैं, फिर टेंथ टू इलेवेंथ ग्रेड आमतौर पर उसको कॉलेज कहते हैं, फिर वो भी स्कूल ही होता है। स्कूल मीन्स जहाँ पे के टीचिंग होती है ना, उस जगह को स्कूल कहते हैं। तो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ग्रेड वाले को हमारे मुल्कों में कॉलेज कह देते हैं। फिर उसके बाद 13 से 18 ग्रेड हो, 16 ग्रेड हो, जितने होते हैं उन सबको फिर यूनिवर्सिटी कह देते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी भी स्कूल ही होता है, क्योंकि स्कूल तो वो जगह है जहां पे पढ़ाई जा चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दारुल उलूम जो है वो भी मदरसा ही होता है, लेकिन वहां पे ज्यादा एडवांस बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो हमने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें कुछ ये बताएं चीजें कि जो कि मदरसे के अंदर और दारुल उलूम के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब मुझे अंदाजा है कि आप में से अक्सर जो है वो जरा छोटे उम्र के भी हैं, तो उनको शायद ये बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, लेकिन सारे छोटी उम्र के बच्चे नहीं है यहाँ पर, बल्कि कुछ 14 एंड अबव भी हैं, तो उनको थोड़ी बहुत या ज्यादा यकीनन समझ में आई होंगी बात। अच्छा, हमने उनको ये क्यों कहा था कि आप हमें मजीद बतलाएं कि क्या पढ़ाया जाता है दारुल उलूम के अंदर, उसकी वजह थी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि हम जैसे लोग, ठीक, जो के दुनियावी एजुकेटेड है ना, सेक्युलर एजुकेशन कहते हैं, असरी तालीम याफ्ता भी कहते हैं। असरी का मतलब होता है कि जी दुनिया के अंदर आजकल जो तालीम है ना, तो उसको असरी, आयन सौद रा या असरी तालीम कहते हैं। दुनियावी तालीम भी इसको कहते हैं, जैसे डॉक्टरी की तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम, कंप्यूटर साइंस की तालीम, लॉ की तालीम। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ना, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो सारे के सारे, जिनको मैं सबको जानता हूं यहाँ पर, तो उन सब के पेरेंट्स कौन है जो कि दुनियावी तालीम याफ्ता है। ठीक है ना, किसी के अब्बू जो है वो डॉक्टर हैं, किसी के अब्बू जो है वो इंजीनियर हैं, किसी के अब्बू साइंटिस्ट हैं, किसी का अब्बू जो है वो फाइनेंस के फील्ड के से ताल्लुक रखते हैं। सो सब दुनियावी तालीम याफ्ता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो हमारा तबका है ना, हमारे तबके में दीनी उलूम के बारे में पता नहीं है ये क्या चीज होती है। ठीक है, अच्छा, ज्यादा सही बात यह होगी कि दीनी उलूम के बारे में पता नहीं था कि ये क्या चीज होती है। अब पता चल गया है कि ये क्या चीज होती है, लेकिन आज से अगर आप 20 इयर्स पहले चले जाए ना, 30 इयर्स पहले चले जाए, तो उन लोगों को कि जो कि यूनिवर्सिटी गए और डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने, उनको बिल्कुल नहीं पता होता था कि दीनी उलूम क्या चीज होते हैं। कि दीनी उलूम भी कोई चीज होती है, क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था किसी को। ठीक है, उसके ऊपर मैं अपनी एक जाती कहानी लोगों को सुनाता हूँ। अंकल्स को जो है वो पिछले हफ्ते सुनाई थी, आप लोगों को आज सुना देते हैं कि हम भी स्कूल गए थे, ठीक है। तो हम उस वक्त जो है वो स्कूल में गालिबन 9th ग्रेड में थे, ठीक है। तो हमारे जो बड़े भाई है ना, आप में से अक्सर उनको जानते हैं, डॉक्टर इरफान करीम साहब, मेरे बड़े भाई, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर है। उस वक्त वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए थे डॉक्टर बनने के लिए, फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए, MBBS डिग्री हासिल करने के लिए, फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो उनको जो है ना फिर पढ़ाने के लिए किताबें खरीदनी पड़ी, पढ़ने के लिए अपनी, जो कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। तो वो जब वो किताबें लेकर के आए ना घर पे, तो हमने जिंदगी में कभी इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं देखी थी, ठीक है। इतनी मोटी किताब, नाम भी कुछ के मुझे थोड़े थोड़े से याद होंगे, लेकिन एक किताब उनमें से थी जो कि इतनी बड़ी थी, है ना, लंबी और इतनी मोटी थी, ठीक है। उसका नाम था ग्रेज एनाटॉमी, उसका लिखने वाले का नाम था ग्रे, ठीक है। गोरों के ऐसे नाम होते हैं, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन, ठीक है। उनके नामों का आपको बताया था ना पिछली दफा भी, शायद कि कोई मतलब मतलब कोई नहीं होता उनके नामों का। तो उसका नाम था ग्रे, ठीक है। तो ग्रे साहब ने जो है ना वो एनाटॉमी के ऊपर, यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो उसके अंदर तफसील अंदर क्या है, कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, उसको एनाटॉमी का साइंस कहते हैं। उसने इतनी मोटी किताब लिखी थी एनाटॉमी के ऊपर, ग्रेज एनाटॉमी। तो जब हमने ये किताब देखी ना, हमने कहा यार वाकई डॉक्टर लोग कितना पढ़ते हैं, कितना इल्म होगा इन लोगों के पास, कितना पढ़ते होंगे ये लोग, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, हैरान रह गए, ठीक है। तो डॉक्टरों की इज्जत बन गई दिल के अंदर ना। पहले तो था डॉक्टर साहब जो थे ना, वो उनके पास अम्मी पकड़ के लेके जाती थी, और डॉक्टर साहब एक कड़वी दवाई दे देते थे, और जो है वो कभी इंजेक्शन लगा देते थे, तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी दिल के अंदर ना, वो तो बुरे ही लगते थे हमेशा, सही है। तो डॉक्टर साहब हमेशा बुरे लगते थे, क्योंकि वो इलाज करते थे कड़वी दवाइयों के जरिए से, और पता नहीं किस इंजेक्शन वगैरह के जरिए, वो बुरे लगते थे ना फिर वो, ठीक है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत बन गई उनकी, कि भाई ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास इल्म होता है, नॉलेज होती है इनके पास, किताबें पढ़ते हैं ये, ठीक है। अच्छा, फिर कई साल गुजर गए, हम जो है हम भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री हासिल कर ली, फिर उसके बाद जॉब भी करी कंप्यूटर साइंस में, फिर उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें किसी जगह पहुंचा दिया, इसका तस्कर आप अक्सर सुनते रहते हैं। वहां पहुंच करके अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि हमारा ताल्लुक जो है ना फिर वो उलमाए कराम के साथ हो गया, जिनको कि हमारे मुआशरे में मौलवी साहब कहा जाता है, ठीक है ना। मौलवी साहब का मतलब ये होता है कि बहुत ही कोई खेत की गाजर मूली, समझते हैं क्या होती है गाजर मूली, तो मौलवी साहब भी मूली साहब ही होते हैं, ठीक है, यानी गाजर मूली की तरह उसकी कोई हैसियत नहीं होती है ना, ठीक है। तो उसी तरह से मौलवी साहब भी मूली साहब, कोई हैसियत नहीं उसकी। तो अल्लाह ताला ने मौलवी साहब के पास पहुंचा दिया। जब मौलवी साहब के पास पहुंचे, तो फिर वहां पर उस वक्त तक जो है ना वो थोड़ा सा दीन का कुछ समझने का शौक पैदा हो गया था। तो जब मौलवी साहब से बात हुई, तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई आप दीनी उलूम क्यों नहीं हासिल कर लेते, ठीक है आप जॉब करते हैं, लेकिन जॉब तो आप सुबह को करते हैं ना, और शाम तक आप वापस आ जाते हैं, फिर तो आपके पास टाइम होता है, और सुबह से पहले भी आपके पास टाइम होता है, कल पिछली तरह बताया था ना आपको, फजर से पहले भी तो टाइम होता है ना, और शाम के बाद भी टाइम होता है आपके पास, तो आप दीनी उलूम क्यों नहीं हासिल करते। तो हमने कहा हाँ भाई ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हम भी दीनी उलूम हासिल करते हैं, ठीक है। तो जब हमने मौलवी साहब से दीनी उलूम हासिल करने शुरू किए ना, तब हमने उनकी किताबें देखी, और तब पता चला कि मोटी किताब किसको कहते हैं। ये ग्रेज एनाटॉमी जो है ना, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी उन किताबों के सामने जो कि हमारे मौलवी साहब पढ़ा करते हैं, और वो एक नहीं होती इस तरह की कि भाई, तो उनके पास तो एक ग्रेज एनाटॉमी थी ना, उनके पास सिर्फ बुखारी शरीफ इतनी मोटी है, इतनी मोटी, इतनी मोटी, 7 वॉल्यूम्स के ऊपर, एक बुखारी शरीफ, फिर सही मुस्लिम शरीफ इतनी मोटी, 7 वॉल्यूम्स के ऊपर। कुरान शरीफ तो सबको ही पता है कि कुरान शरीफ कितनी होती है, वो तो आप लोगों ने हिफ्ज भी कर लिया, लेकिन कुरान शरीफ की तफसीर आपको पता है, मारुफुल कुरान 8 वॉल्यूम्स के ऊपर, ठीक है। और फिर हदीस की जो ये किताबें हैं, उनकी जो शुरुहात एक्सप्लेनेशन जो लिखी गई है, वो तो उनसे भी ज्यादा बड़ी, और फिर फिकह की किताबें हिदाया शरीफ इतनी बड़ी, इतनी बड़ी सारी जो है वो हिदाया शरीफ, फिका की किताब, कुदूरी शरीफ इतनी मोटी, जो मौलाना साहब इतने सारे नाम बता रहे थे, तो ये इतनी सारी किताबें जिनके उन्होंने आपको खाली नाम बताए हैं, ये वाकई आलिम दीन जो है वो पढ़ता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्स देता है, और वो एग्जाम्स भी इतने सख्त होते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी एग्जाम्स ये पता लग गया कि क्या होता है ये, ठीक है। तो हमें उस वक्त पता चला कि इल्मे दीन क्या चीज होती है, वरना उससे पहले हमारे मुआशरे के अंदर इल्मे दीन के बारे में क्या होता था। हम अपने हजरत जी की एक बात आपको सुनाते हैं, हमारे हजरत जी जो है ना बयान में एक वाकया सुनाते थे कि एक दफा ना हम बैठे हुए थे, एक मुफ्ती साहब हमारे सामने बैठे हुए थे और एक जो है वो कोई पीएचडी डॉक्टर साहब आ गए थे वहां पर, ठीक है। तो पीएचडी डॉक्टर साहब ने ना ऐसी बातों बातों में मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब आप कुछ पढ़े हुए भी हैं, मुफ्ती साहब आप कुछ पढ़े हुए भी हैं, ऐसे पूछा ना, आपने कुछ पढ़ा लिखा भी है कहीं, आप कुछ आता जाते भी है आपको के नहीं, ठीक है। तो हजरत जी फरमाते हैं कि वो शख्स मुफ्ती जो होता है उसने दीनी उलूम के दफ्तर के दफ्तर यानी रजिस्टर्स के रजिस्टर्स जो उसने अपने अंदर पढ़ करके अपने अंदर दाखिल किए होते हैं, अपने सीने में दाखिल किए होते हैं, ये पीएचडी डॉक्टर जो है वो उसको ऐसे कह रहे हैं कि जैसे उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जैसे किसी जाहिल से आप बोले ना कि तुमने कुछ पढ़ा लिखा भी है, ऐसे जो है वो मुफ्ती साहब जैसे कि हम किसी पीएचडी डॉक्टर के पास जाकर के बोले कि आपने आपको पढ़ना लिखना भी आता है, तो दुनिया फिर हमारे ऊपर हंसेगी ना कि तुम पीएचडी डॉक्टर से फिरे हुए दिमाग से पूछ रहे हो। सॉरी यहाँ पे भी पीएचडी लोग मौजूद है, अदर जी फरमाते थे, बस मैं कोट कर रहा था, पीएचडी पीएचडी। तो तुम उनसे कह रहे हो कि तो वो पढ़े हुए भी हैं, उन्होंने इतने साल पढ़ा यूनिवर्सिटी में, थीसिस लिखे और उन्होंने रिसर्च करी और उनको जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और तुम कह रहे हो कि तुम पढ़े लिखे भी हो, तो लोग हम पे हंसेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका वजह क्या है, हमें पता ही नहीं कि उसने क्या पढ़ा हुआ है। यही मामला जो है वो दीनी उलूम के बारे में भी है, या था उस वक्त था, जो लोगों को नहीं पता था कि आलमे दीन कितना पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या, फास्ट फॉरवर्ड करें आप 30 ईयर्स आगे आ जाएं, अब क्या फर्क आ गया है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, एक बहुत बड़ा फर्क आ गया, वो क्या, वो आप में से कोई बताएगा तो हम आगे चलेंगे। अब ऐसे हालात नहीं है, ठीक है, कि दीनी उलूम के बारे में किसी को पता नहीं कि दीनी उलूम क्या होते हैं, अब ऐसे हालात नहीं है। तो अब कैसे हालात हैं
जी फरहान।
अच्छा ठीक है, और
दिन की हवाएं चल रही है, एवरीवन नोज द नॉलेज।
दिन की हवाएं चल गई हैं, अच्छा और कोई, इनकी आधी बात सही थी कि अब सबको पता है कि दीन उलूम क्या है, लेकिन क्या नहीं पता आप लोगों को। जी
दीनी उलूम में सिर्फ ज्यादातर लोगों को कुरान और हदीस का पता होता है, बाकी जो इतने उलूम अभी आपसे पहले जो बयान किए उनके बारे में नहीं पता, वे नहीं सकता।
हाँ, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है, चले अच्छा दीन उलूम को मानते हैं लेकिन दीन उलूम की नहीं मानते हैं, और कोई, अच्छा
उपनिवाओं का रोल या पर्पस नहीं समझते, बस ये समझते हैं कि इनको खिलाफत कायम करनी चाहिए।
सही है। चले यहाँ भी कोई जवाब आ रहे हैं, कॉम की तो नहीं, क्या लिखा है उन्होंने, तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा यार, चश्मा दूसरा दुश्मन आना चाहिए इसका। पीपल आर अवेयर ऑफ दीनी उलूम बट डोंट बिलीव इट कैन बी टेकन एज अ करियर। हाँ ये भी ठीक है, आपने जवाब दिया, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा था आपसे। अच्छा एक और जवाब आया है कि दीनी उलूम, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया गर्ल साइड पर, ठीक है। लोगों को पता है कि दीनी उलूम क्या है, इनकी कितनी अहमियत है, ये लोगों को पता चल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का शुक्रिया, लेकिन थैंक्स टू पीपल लाइक हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, पीपल लाइक मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू, पीपल लाइक ऑल ऑफ दीज मशाइख एंड उलमा, ठीक है ना, इनकी मेहनतों से सबको पता चल गया कि दीनी उलूम क्या है, हत्ता कि बहुत सारी डिटेल्स भी पता चल गई हैं, लेकिन क्या नहीं पता कि ये दीनी उलूम है,
इसके अंदर क्या है?
ये कहां से लेने हैं जाकर के, ये दीनी उलूम कहां से मिलेंगे हमें, राइट, इन दीनी उलूम के एक्सपर्ट्स कौन हैं? जैसे सबको पता है ना कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना बड़ी अहम चीज है, डॉक्टर बड़े इज्जत वाली प्रोफेशन होता है, ठीक है, और डॉक्टर को बड़े पैसे मिलते हैं, ये भी सबको पता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर कैसे बनना है, कहां जाकर के डॉक्टर की तालीम हासिल करनी है, ये पता है ना सबको, राइट? ये यहाँ पे जो भी है, जहाँ पे हमारे यूशा भाई पढ़ते हैं, वहां जाकर के किंग फैसल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जाके पढ़ना है, किसी ने जो है वो किंग सऊद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जाकर के पढ़ना है, पाकिस्तान में है तो डॉ मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना है, सिंध मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ना है, इंडिया में है तो इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज, सबको पता है कि वहां वहां मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाकर के पढ़ना है, क्योंकि डॉक्टरी की तालीम वही मिलती है, राइट, गूगल पे नहीं मिलती है ना, हालांकि गूगल के पास सारी डॉक्टरी किताबें मौजूद हैं, सारी की सारी डॉक्टरी किताबें मौजूद हैं गूगल के ऊपर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आप इवन लेक्चर्स भी बना सकते हैं कि ये फलानी किताब का मुझे लेक्चर जो है ना तुम बना दो और मैं उसको सुन लूंगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए कोई ना तो गूगल से डॉक्टर बनता है और ना जो है वो AI से डॉक्टर बनता है, बल्कि मेडिकल कॉलेज जाके डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसको पता है कि यहीं पे एक्सपर्ट्स हैं, राइट right? उसी तरीके से इंजीनियर बनने के लिए सबको पता है कि इंजीनियर बनने के लिए NED जाना है, UET जाना है, फलानी यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है ना, वहीं पे एक्सपर्ट्स हैं, खुद से गूगल के ऊपर कोई इंजीनियर नहीं बनता, ठीक है, लेकिन दीनी उलूम का मामला क्या है कि इतना तो पता चल गया है कि दीनी उलूम जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी काम की चीज है और बड़ा पता होना चाहिए हम मुसलमानों को, लेकिन कहां से ये हासिल करने हैं, इनके एक्सपर्ट्स कौन हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस कौन हैं, ये अक्सर लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, तो लोग फिर अपने अजम्पशंस की बुनियाद पर, जब इल्म ना हो किसी बात का तो फिर आप अजम्पशंस करते हैं, और अजम्पशंस करते हैं तो फिर आप खोते बनते हैं, खोते, राइट, यू मेक अ खोता आउट ऑफ यू एंड मी, एक तो खुद भी खोते बनते हैं, दूसरे को भी खोता, खोता हुआ मतलब क्या होता है, डोंकी, DUNKEY, ठीक है, तो यू एंड अप बिकमिंग ए डोंकी, राइट, एंड मेकिंग अदर पर्सन डोंकी एज वेल, ठीक है, तो इस वजह से हमने मौलाना साहब से खुसूसी दरख्वास्त करी कि आप हमें इतना बताएं कि दीनी उलूम जो है ना वो कहाँ से मिलते हैं, ये जो उलमाए कराम मदारिस से और दारुलूम से बन के निकलते हैं, इनके पास कितने उलूम होते हैं, कितने इनके पास जो है वो नॉलेज होती है, ठीक है, तो एक तो ये इसकी रीजन थी इस वाली प्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करने की, सही है, और इसकी एक और रीजन भी थी, लेकिन हमारी क्लास तो खत्म, टाइम भी खत्म हो जाएगा, वैसे हमारी क्लास आज खत्म करने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि हजरत अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इतनी बातें हैं जो कि करने का दिल चाह रहा है आप लोगों से, कि वो आज तो वैसे भी पूरी नहीं होने वाली वाली नहीं, तो ये बात समझ में आ गई सबको कि भाई क्यों हमने प्रेजेंटेशन करवाई है मौलाना साहब से, ठीक है जी,
अफ्रीका के ये नहीं पता कि इस सब उलूम को किस जगह से हासिल करें, तो शायद इसकी वजह हो सकती है कि जो दुनियावी मेडिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, और वो अगर हम ना भी पता करना चाहें तो भी किसी तरीके से पता, लेकिन मदारिस की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती।
ये कह रहे हैं कि शायद इस वजह से हमें मदारिस के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि मदारिस की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है, लेकिन जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती है ना उनकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, ठीक है, ये बात बेशक ठीक है, ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या किस चीज को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है, तो देखें एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो किस चीज को कहते हैं भाई,
You're trying to sell something, which is not that prominent, something new.
when you are trying to sell something, या ये जिस माने में एडवर्टाइजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे वो ये था कि आप लोगों को उस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एड्स लगाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ना सेलिंग इज नॉट एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग तो फिर वो उससे आगे बढ़ करके एक चीज होती है, एडवर्टाइजमेंट इज अ टूल ऑफ सेलिंग, वन ऑफ द टूल्स ऑफ सेलिंग, इट्स नॉट सेलिंग इट्सेल्फ, ठीक ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो असल मतलब है ना, हकीकत लफ्ज एडवर्टाइजमेंट की क्या है, कि यू टेल पीपल अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब हम एडवर्टाइजमेंट समझते हैं सिर्फ इश्तेहारात को, जो कागज के ऊपर छपे हुए इश्तेहारात हैं, या जो है वो इंटरनेट के ऊपर लगे हुए इश्तेहारात हैं, या टीवी के ऊपर आए हुए इश्तेहारात हैं, ठीक है। तो बेशक उनके ऊपर जो है ना वो मदारिस की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही होती, सही है। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि ये जो मीडियम्स हैं, ये मीडियम्स जो है ना, ये कंट्रोल्ड होते हैं, ये मीडियम जो है ये कंट्रोल्ड होते हैं। किनके कंट्रोल में होते हैं? ये उनके कंट्रोल में होते हैं कि जो के मदारिस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, मदारिस से मोहब्बत नहीं करते, तो इस वजह से ना इनके ऊपर सही मदारिस के एडवर्टाइजमेंट लाना भी इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। ये लोग मदारिस के हेल्पर्स नहीं होते, मदारिस के फेवर में नहीं होते, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो बताने की बात होती है ना, कि भाई आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो अब हकीकत थोड़ी सी और भी है, कि भाई जो हमें पता था कि हमारे भाई साहब ने डॉक्टर बनना है, भाई साहब को पता था कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, हमारी अम्मी को पता था कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, तो डीएमसी के बारे में उन्होंने कोई इश्तिहार देखा था आपके ख्याल में? डीएमसी डिडॉ मेडिकल कॉलेज को कहते हैं कराची में, ठीक है ना। मेरी अम्मी ने कोई इश्तिहार नहीं देखा था डीएमसी के बारे में, तो इश्तिहार देख करके उनको पता चला कि अच्छा डीएमसी वो जगह है जहां पे जाकर डॉक्टर बना जाते हैं। नहीं, उन्होंने कोई इश्तिहार नहीं देखा था, ना टीवी पे देखा था, उस जमाने में इंटरनेट तो खैर होता भी नहीं था, और ना अखबार में डीएमसी का कोई ऐड आया था। फिर कैसे पता चला डीएमसी के बारे में? बिकॉज हमारा जो खानदान था, जो हमारे दोस्त अहबाब थे, सबको पता था कि डीएमसी क्या है। कैसे पता था? सब डीएमसी के बारे में आपस में बातें करते थे, एक दूसरे को बताते थे, ठीक है ना। तो किसी का बच्चा डीएमसी पढ़ के निकलता था तो उसको हार पहनाए जाते थे, और उसकी बड़ी शोहरत होती थी, बड़ी इज्जत होती थी। तो इस वजह से बगैर इश्तेहार के ही सबको पता था कि डीएमसी क्या है। देर वॉज नो एडवर्टाइजमेंट फॉर डीएमसी एनीवेयर। लेकिन उसी शहर में जहां पे डीएमसी था, उसी शहर के अंदर दारुलूम इस्लामिया बिनोरी टाउन भी था, उसी शहर के अंदर दारुलूम गौरंगी ये भी था, ह्यूज यूनिवर्सिटी, बिनोरी टाउन भी, कोरंगी भी, और भी बहुत सारे कई बड़े बड़े मदारिस उसी कराची शहर के अंदर, जिसमें डीएमसी था, एसएमसी था, पकाई मेडिकल कॉलेज बाद में बना, लेकिन किसी को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता भाई कि दारुलूम कराची क्या होता है, बिनोरी टाउन क्या होता है, क्यों नहीं पता? इसलिए के नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट। Why they were not talking about it? इसलिए कि दीन और दीनी उलूम की इंपॉर्टेंस नहीं थी। दीन की, जाहिर है, दीनी उलूम की इंपॉर्टेंस कब होगी? जब दीन की इंपॉर्टेंस होगी, तभी तो दीनी उलूम की इंपॉर्टेंस होगी ना, इंपॉर्टेंस नहीं। जी मुझे ऐसे इस शोर की वजह से मेरे कान हो
गया।
जी, दारुलूम कौरंगी भी वही स्टार्ट हुआ था जहां पे टीएमसी कॉलेज था, वही, यानी पुराना कराची जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी दारुलूम के बारे में किसी को नहीं पता, और डीएमसी के बारे में सबको पता, ठीक है। तो यही मामला जो है ना वो आज भी चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, द प्रॉब्लम इज वी डोंट वॉन्ट दीज उलूम, ठीक है, वी डिडंट वॉन्ट दीज उलूम। तो अब जो मसला हुआ है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी उलूम की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा आ गई है, लेकिन अब लोग समझते हैं कि बस गूगल पे जाकर के कुछ सर्च कर लिया या जो है वो अपनी तौर पे किताबें पढ़ करके उनको हम पढ़ लेंगे तो हम जो है ना वो दीनी उलूम के मास्टर्स बन जाएंगे, एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। लेकिन जो दीनी उलूम आपको मदारिस के अंदर दिए जा रहे हैं और जितनी डिटेल और जितनी कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो दिए जा रहे हैं तो उसका किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। एंड वी डोंट टॉक अबाउट दिस, भाई व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, बिकॉज वी वांट पीपल टू टॉक अबाउट। इसी वजह तो इस क्लास के अंदर बात कर रहे हैं आप लोगों से इसके ऊपर ना, उम्मीद ये है कि आप लोग भी बात करेंगे फिर आगे जाकर के। ये तो नहीं कि मैं ही बोलता रहूंगा, मौलाना साहब बोल के बस खत्म, बस यहाँ से अब आगे नो मोर। भाई इसलिए आपसे बात की जा रही है ताकि आप आगे जाकर के बात करें ना, ठीक है। अच्छा एक और आखिरी बात, बनाओ मदरसाज आर वेरी फेमस इन पाकिस्तान, पीपल सेंड किड्स प्राउडली, आपके बच्चे जाते होंगे ना, हम मेजोरिटी की बात करें, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, ठीक है, ये हमेशा याद रखा करें, अक्सरियत की बात होती है, सही है। अकलियत अल अकल्लु कल मादूम, मादूम का मतलब होता है कि इट डजंट एग्जिस्ट। तो जो अकल होता है ना, माइनॉरिटी जो होती है ना, इट्स लाइक एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको हम जानते हैं, जो लोग अपने बच्चों को मदारिस भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, जाके स्कूल के सामने खड़े खड़े हुआ करें कराची के अंदर, कितने बच्चे वहां से निकलते हैं। और कुछ कह रहे हैं? क्या लिखा है उन्होंने, दीन वॉज नॉट ए प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेट, यस ठीक है। अच्छा एक और बात जो के करनी जरूरी है, मौलाना साहब की क्लास की फिनिशिंग से पहले, वो ये कि एक और बहुत बड़ी गलतफहमी जो शैतान की फैलाई हुई है, ऑफकोर्स ठीक है ना, भाई शैतान ही इस की गलतफहमियां फैलाता है ना, तो एक गलत फहमी यानी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये फैलाई हुई है कि जो दुनियावी उलूम हासिल करता है ना उसको तो क्या मिलती हैं, उसको मिलती हैं कारें, ठीक है, और क्या मिलती हैं, बहारें, उनको मिलती हैं कारें और उनको मिलती हैं बहारें। बहारों का मतलब पता है ना, स्प्रिंग, यानी बहार वो मौसम होता है साल का कि जिसके अंदर बड़े खुशबू वो फूल खिलते हैं और बड़ी खुशबुएं होती हैं और बड़ा अच्छा मौसम होता है, उसको बहार का मौसम कहता है कहते हैं। तो हम उर्दू में एक मुहावरा में कहते हैं कि भाई ये तो इसकी जिंदगी में तो बड़ी बहारें हैं, यानी इसकी जिंदगी में तो बड़ी खुशियां हैं, बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं, बूटे हैं, ये वो। हमारे हजी फरमाया करते थे कि कारें और बहारें और रोटियां, चाहे तंदूरी हो, चाहे चपाती हो, चाहे नान हो, चाहे पराठे हो, रोटियां और बोटियां, रोटियां और बोटियां, बोटियां का मतलब चरगे, तिक्के, बीफ कबाब, सीख कबाब, बारबेक्यू, ठीक है। तो हम ये समझते हैं क्योंकि शैतान ने हमें समझा दिया है कि जो दुनियावी उलूम पढ़ता है ना उसको कारें भी मिलती हैं, उसको बहारें भी मिलती हैं, उसको रोटियां भी मिलती हैं, उसको बोटियां भी मिलती हैं, यानी सब कुछ मिलता है उसको, ठीक है। और जो दीनी उलूम पढ़ता है उसको ना कारें मिलती हैं, ना बहारें मिलती हैं, ना रोटियां मिलती हैं, ना बोटियां मिलती हैं। बेचारा मर जाता है, उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, उसको कुछ पहनने के लिए नहीं मिलता, उसको कुछ सवारी करने के लिए नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है ऐसा बंदा जिंदा कैसे रहेगा, वो मर जाएगा ना फिर उसके बाद। हालांकि माशाल्लाह मौलवी साहब भी जिंदा है, मौलाना साहब भी जिंदा है और अच्छे खासे अच्छी सेहत के साथ जिंदा है, लेकिन ये धोखा होता है शैतान का कि बस तुम मर जाओगे अगर तुमने दीनी उलूम पढ़ लिए, और अगर तुमने दुनियावी उलूम पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि बिल्कुल भी इसके अंदर हकीकत नहीं, बिल्कुल भी इसके अंदर हकीकत नहीं। हकीकत क्या है ये आप बताएंगे, हकीकत बताएं, ये नहीं बताइएगा कि नहीं उधर भी मिलते थे, वो तो मुझे पता है, पता आप, आपने सुन लिया है बात, उधर भी मिलती है, इधर भी मिलती है, थोड़ी तफसील इसके अंदर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, लॉयर, फाइनेंस का स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ACCA, जो भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CA, एक लतीफा सुना है CA का, ठीक है, एक रिश्ते के लिए जो है ना वो किसी लड़की के घर में लोग रिश्ता लेकर के आए अपने बेटे का, ठीक है, तो लड़की वालों ने लड़के की अम्मा से पूछा, लड़का क्या किए है, लड़का क्या करता है? ठीक है, तो लड़के की अम्मा ने जवाब दिया, मेरा बेटा सीए है। वो खुश हो गई, ओहो मेरी बेटी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिश्ता आ गया। उन्होंने फौरन बेटी की शादी कर दी। ये उन्होंने कहा था मेरा बेटा सीए है, उन्होंने फौरन शादी कर दी। तब बेटी साहिबा जो है वो ससुराल गई, तो पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उनको कुछ भी नहीं पता, ये तो दर्जी की दुकान पे काम करते। शौहर मियाँ तो दर्जी की दुकान पे काम करते हैं। तो वो पहुंच गई कि आपने हमसे झूठ बोला कि आपका बेटा जो है वो सीए है, हमने तो बेटी की शादी कर दी, उसको तो कुछ काम सीए भी नहीं आता। उन्होंने कहा था मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला था, मैंने आपको यही कहा था मेरा बेटा सीए है, सुई धागे से जो है वो कपड़ा सीए है। तो बहरा, तो हकीकत क्या है कि आलम दीन को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता और डॉक्टरों को सब कुछ खाने पीने को मिलता है। व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द डिटेल इन दिस? डिटेल इन दिस इज ये जी, किसको क्वेश्चन को समराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन को समराइज ये करते हैं कि ये है कि ये जो गलत फहमी शैतान ने फैलाई हुई है ना कि डॉक्टर इंजीनियर इसको जो है वो सब कुछ मिल जाता है दुनिया का, ठीक है, और आलिम दीन को जो है वो दुनिया का कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों मिलता तो दोनों को है, ठीक है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर क्या है जी?
जबकि कोई एनुअल फाइनेंस या आईटी जैसे कोई बंदा किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है तो वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखता है, कि हाउसिंग की फीस भी देता है, सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सैलरी भी अच्छी होती है, तो जो आलिम दीन है ही इज बेसिकली एम्प्लॉयड बाय अल्लाह हिमसेल्फ। तो जब वो अल्लाह ताला का काम करेंगे, अगर दीन का सही आलिम हो और सही तरीके से दीन का काम करे तो बाय डूइंग थिंग दैट अल्लाह वुड प्रोवाइड।
सही, ठीक है, आपने अच्छी एक डिटेल पॉइंट बताया, ठीक है, लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट था ना वो कुछ और था, वो मैं जरा उनको पढ़ लूँ कि लिखा है, इल्म ऑफ वर्ल्ड प्रोवाइड्स थिंग्स ऑफ वर्ल्ड व्हिच डू नॉट हेल्प अस डू हेल्प अस ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हाइल इल्म ऑफ दीन प्रोवाइड्स जन्नत। नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी जन्नत में जाता है, इंजीनियर भी जन्नत में जाता है, ये जन्नत जन्नत जो है वो सिर्फ मौलवी साहब के नहीं रखी हुई अल्लाह ताला ने, ठीक है, कि जो मौलवी होगा वो जन्नत में जाएगा, डॉक्टर जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जी। रेहान भाई,
अल्लाह अल्लाह
अल्लाह हु रज़ाकुल कुव्वत अल मतीन, आपको ठीक है जी, फरमान।
उनके कहने के मतलब है कि जो दुनियादार लोग को भी मिल रहा है और इन्हीं दीनदार मदरसे के बिस्तर के लोगों से।
ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही हैं, हजरत जी ने बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है, और आप लोग भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भी उलूमा पढ़ते हैं ना, तो उनको पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, रियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, दुनिया में कमाना, कमाने की दुनिया में आते हैं, अब आप कमाना होता है ना, ठीक है, तो शुरू में हर एक को स्ट्रगल करनी होती, शुरू में सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको मुशक्कत करनी पड़ती है, सबको हजरत जी फरमाते थे चक्की पीसनी पड़ती है, ठीक है, अनलेस के आपके अब्बा जो हैं वो बहुत अमीर कबीर हो और आपके अब्बा जो हैं वो कहें कि नहीं मेरा बच्चा चक्की नहीं पीसेगा, चक्की तो खैर बच्चे को फिर भी पीसनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, मिल गई, चक्की फिर भी पीसनी पड़ती है, लेकिन बाहर एक गाड़ी मिल जाती है बस, थोड़ा सा कुछ अच्छा और कुछ नहीं, तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता, ठीक है ना, बसों के धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, लोगों की सलवातें हम कहते हैं, सलवातें बोलना नहीं चाहिए, लोगों की बुरी बुरी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, लायर हो, जो भी हो, ठीक है, या चाहे आलमी दीन हो, उसको भी मुशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, हम समझते हैं, अच्छा वही हमारे भाई, देखें आजकल तो जमाना बहुत दीनदार बन गया ना, तो आजकल तो आप लोग मौलाना साहब को नहीं देखते, अदर जी को कभी देखे? अदर जी की गाड़ियां देखी हैं कभी? जो महद गए हैं उन्होंने हजरत जी की गाड़ियां देखी हैं ना? ठीक है, अच्छा मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ियां देखी हैं, जो उन वो खुद जिसमें बैठते हैं, जो उनके आगे चल रही होती हैं, जो उनके पीछे चल रही होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे दूसरे उलमाए कराम, कारे भी हैं, बहारे भी हैं, रोटियां भी हैं, बोटियां भी हैं, लेकिन ये कब मिलता है? ये जब वो स्ट्रगल पीरियड आप गुजार लेते हैं ना, उसके बाद मिलता है। ये शुरू में नहीं मिलता किसी को भी। हाँ, अगर आलमे दीन के अब्बा बहुत ज्यादा अमीर कबीर हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आलमे दीन साहब जो है वो शुरू से ही गाड़ी में जा रहे होते हैं, है? हमारे जो उस्ताद थे डॉक्टर हुसैन अब्दुल सत्तार, जिनसे मैंने सर्फ नहाव पढ़नी शुरू कर दी, आपको पिछले क्लास में बताया था ना कि फजर में मुझे बुला लेते थे और मुझे एक फाला का टेबल दे देते थे और पढ़ने के लिए लगा देते थे। तो वो जब दीनी उलूम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आए ना, ठीक है ना, तो उनके अब्बा ने उनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया। वो गाड़ी में मदरसे जाते थे और गाड़ी में मदरसे से वापस आते थे इस्लामाबाद शहर के अंदर। भाई क्यों? इसलिए कि अब्बा के पास पैसे थे, ठीक है ना, अब्बा पहले से अपनी स्ट्रगल पीरियड को गुजार करके वो स्टैब्लिश हो चुके थे, उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दे दी, तो वो गाड़ी के ऊपर आलिम दीन बने, ठीक है। लेकिन जिस मदरसे में वो जाते थे, वहां जो तालिबे इल्म होते थे, उनके अब्बाओं के पास पैसे नहीं होते थे। तो उस मदरसे का वो बताते हैं कि एक दफा जो है ना, वो मदरसे में तो आपको पता है ना दाल मिलती है, ठीक है ना, आमतौर पे वो भाई नफ्स की इसलाह करने के लिए दाल दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दफा जो है ना, वो पेप्सी की बोतल आ गई मदरसे के अंदर, एक पेप्सी की बोतल पूरे मदरसे के बच्चों के लिए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि भाई उन बच्चों के अब्बा जो थे वो अमीर कबीर नहीं थे। तो पेप्सी की बोतल आई ना, तो कहते हैं कि फिर बच्चों ने पता है क्या कहा, उनका एक बाल्टी लेकर के आए। उस बाल्टी के अंदर उन्होंने पानी भरा, जामिया फरीदिया इस्लामाबाद की कहानी सुना रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। उस बाल्टी में उन्होंने पानी भरा, उस पानी के अंदर जो है उन्होंने एक पेप्सी की बोतल उंडेल दी और उसको घुमा दिया ना, तो वो पूरी की पूरी पानी की बोतल जो है वो काली हो गई। टेस्ट तो उसके अंदर क्या खाक आया होगा पेप्सी का, लेकिन रंग जरूर आ गई। अब उस बाल्टी के अंदर से सबने पेप्सी पी, राइट। तो भाई अब्बा और अब्बा के ऊपर फर्क होता है, अब्बा आपके अमीर हैं तो आपको जो है वो पहले से गाड़ी मिल जाती है, अब्बा आपके अमीर नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन स्ट्रगल तो सबने करना होता है। तो जो डॉक्टर बनते हैं, हमारे भाई साहब डॉक्टर बने ना, ठीक है, उन्होंने यानी इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त करी हैं कि मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारी मुशक्कतें बर्दाश्त करी, कई सालों के बाद जाकर के फिर वो स्टैब्लिश हुआ। हत्ता के इवन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान छोड़कर के अमेरिका चले गए ना, अमेरिका में भी जाकर के उन्होंने बहुत मुशक्कतें बर्दाश्त करी, बगैर फैमिली के खुद ही पका रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, और कहीं दूर दराज के किसी गांव नुमा जगह के ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टरों को शुरू में ऐसी जगह पर नौकरी मिलती है, ठीक है ना, जहां पे कोई अमरीकी डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता ना, वहां पे वो पाकिस्तानी डॉक्टर को भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है अमरीका ही पढ़ा है, तो वो अमरीका के नाम पे वो जहां भी चाहे वो भेज देते हैं उसको, ठीक है। तो मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, इंजीनियर्स भी मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाद का पीरियड होता है ना, जिसके अंदर माल दौलत वगैरह आपको नजर आ रही होती है, तो वो तो भाई उनका बाद का पीरियड होता है ना, या आप कह देते हैं ये तो उनका आखिरी पीरियड है, शुरू में ऐसा कुछ थोड़ी हुआ होता है। तो शुरू में तो सबने स्ट्रगल करनी होती, ठीक है, आलिम ने भी और काफियों ने भी, ठीक है। अब आगे जा करके आप बताएं कि आगे जाकर के किसके पास कारें बहारें और रोटियां बोटियां आती हैं, क्या सबके पास आ जाती हैं?
जी
नेक लोगों के पास आती हैं। अच्छा, वो जो बिल गेट्स है वो क्या है? इलॉन मस्क बहुत नेक आदमी है, उसके पास कैसे आ गई? बिल गेट्स के पास कैसे आ गई? जी मुस्तफा, ठीक है। तो बाद में जाकर के किसके पास कारें बहारें रोटियां बोटियां आती हैं, किस डॉक्टर के पास आती हैं? कुछ आवाज नहीं आ रही।
अच्छा
हाँ लेकिन ये कुरान की जो आयत है ना, ये है तकदीर से मुताल्लिक, अल्लाह जिसको चाहता है उसको दे देता है। लेकिन हम यहाँ पर लो लेवल बात कर रहे हैं ना कि भाई किसको मिलती है, तो उसके लिए कुरान मजीद की आयत ये है, जो इस स्ट्रगल पीरियड में काम सीख करके और खूब अच्छे से स्ट्रगल करके अपना काम करता है, यानी वाकई स्ट्रगल करता है, यानी सही मेहनत करता है, सही जद्दोजहद करता है, ठीक है ना। कुरान मजीद की कौन सी वाली आयत है इसके लिए? अक्सर क्लास के अंदर ये वाली आयत आती है, ठीक? नहीं वल्लज़ीन जाहदू फीना वाली जो आयत है ना, ये तो रूहानी तरक्की के लिए, यानी तो बहुत ज्यादा ब्लैंक आउट होने शुरू हो गया। क्या है अलैसा लिल इंसाने व अन लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सा, ठीक है ना। इंसान के लिए कोई चीज नहीं है सिवाय वो चीज जिसके लिए उसने मेहनत करी, ठीक है ना, जिसके लिए उसने मेहनत करी उसको अल्लाह ताला वो चीज दे देते हैं, ठीक है। तो जिस जिसने चक्की सही से पीसी हो, हाँ ये भी सही जवाब है, जिसने सही से पीसी हो, तो अब मेहनत जिसने करी अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। तो इसके अंदर फिर क्या चीजें शामिल हैं? नंबर वन इसके अंदर इल्म का हासिल करना, जो कि सही से इल्म हासिल करता है, मेहनत करके प्रॉपरली इल्म हासिल करता है, ये नंबर वन मेहनत है। नंबर वन मेहनत क्या है? कि अपनी फील्ड का सही से इल्म हासिल कर, ठीक है। और फिर नंबर टू मेहनत क्या है? कि अब इस इल्म के ऊपर, इस इल्म के मुताबिक फिर अपनी फील्ड के अंदर काम करना। जैसे कि आपने अच्छे से इल्म हासिल किया है, अब उस इल्म को जो है वो यूज में लेकर के आना, इंप्लीमेंट करना उस इल्म को। तो मेहनत जो है वो सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ा लिखा तो खाक नहीं, इल्म तो आपने कुछ हासिल नहीं किया, अब फील्ड में जाकर के आप मेहनत करना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू हो गए, इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी दौड़ रहे हैं, इधर भी बसों के धक्के खा रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे शख्स को धक्के खाने का भी कोई फायदा नहीं होता कि जिसने इल्म सही से हासिल ना किया, ठीक है। तो मेहनत में दोनों चीजें शामिल है, इल्म और फिर अमल। इल्म भी मेहनत से हासिल किया हो और अमल में भी फिर मेहनत करी हो, ये वो शख्स होता है कि जिसने प्रॉपर स्ट्रगल की है, ये शख्स जो है फिर आगे बढ़ता है और अल्लाह ताला फिर उसको अच्छा रिस्क देते हैं, उसकी लाइन में जितना रिस्क मिल सकता है ना, ठीक है ना। अब हर लाइन के अंदर तो एक जैसा रिस्क नहीं होता ना, एक जैसी वो पैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर डॉक्टर को जो सैलरी मिल रही होती है, वो सैलरी जो है वो एक अकाउंटेंट को नहीं मिल रही होती है, एक अकाउंटेंट को जो सैलरी मिल रही होती है, वो सैलरी जो है वो इंजीनियर को नहीं मिल रही होती, ठीक है। लेकिन अमंग इंजीनियर्स ही बिकम्स ए सक्सेसफुल इंजीनियर, अमंग डॉक्टर्स ही बिकम्स ए सक्सेसफुल डॉक्टर, एंड अमंग उलमाए दीन ही बिकम्स ए सक्सेसफुल आलिमे दीन, हु जिसने इल्म हासिल करने में भी जद्दोजहद करी होती है और जिसने फिर अमल के अंदर भी जद्दोजहद करी होती है। तो ये उसूल हर कैरियर के लिए, ये उसूल हर लाइन के लिए है, चाहे वो दुनिया की लाइन हो, चाहे वो दीन की लाइन, चाहे वो दुनिया की लाइन हो, चाहे वो दीन की लाइन हो, ये फर्क नहीं है इनके दरमियान कोई। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्क फिर किस चीज के अंदर है? फर्क इसके अंदर सिर्फ इतना है कि जैसे क्या फर्क है, एक तरह बताएं जी शांत।
को अपने
नहीं ना, ये तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दीन वालों को भी दुनिया में भी इसका जन्म मिलता है, ठीक है। फर्क इसके अंदर ये है कि जैसे हमने आपको बताया ना कि एक मोटर मैकेनिक है, गाड़ियां खाली ठीक करता है बस, ठीक है ना। उसकी लाइन क्या है गाड़ियों को ठीक करने का, ठीक है। तो आम तौर पर सारी मोटर मैकेनिक एक अच्छी वो नहीं है, मिसाल नहीं है, एक्चुअली कोई भी मिसाल अच्छी नहीं है इसके लिए, क्योंकि हर लाइन के ऊपर इंसान जो है ना वो बिल गेट्स बन सकता है। हर लाइन के ऊपर वो प्रोग्रेस करते करते करते, जैसे मोची की लाइन, मोची मोची समझ रहे ना, लेकिन मोची में भी अगर वो मेहनत करे ना, इल्म हासिल करे लेदर इंडस्ट्री का, और जो है वो उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का इल्म हासिल कर ले, और फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप करना शुरू कर दे, तो वो जूतों की लाइन में मिलीनियर बन सकता है, राइट। मोची साहब जो है वो जूतों की लाइन में मिलीनियर बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कार का मैकेनिक हो, अगर वो इल्म हासिल करे और मैकेनिक के काम को अच्छी तरीके से सीखे, और उसके ऊपर फिर अच्छे से जो है वो उसको इंप्लीमेंट करे अपने इल्म को, वो कार मैकेनिक्स के रास्ते के ऊपर वो एंटरप्रेन्योर बन के मिलियनर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन चले हम थोड़ा सा छोटी लेवल की बात करते हैं, ये मिलियनर तो हर बंदा बन सकता है, ठीक है ना। यानी इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि नहीं, इस लाइन में तो नहीं मिले आप मिलियनर बन ही नहीं सकते, इस लाइन ऐसा नहीं है, बन सकते डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहें कि हाँ इज्जत, असल बात तो इज्जत की है ना, कि मोटर मैकेनिक जो है वो मिलियनर तो बन सकता है, लेकिन उसकी जो है वो इज्जत होगी तो कैसी इज्जत होगी कि हाँ भाई ये कारों का मैकेनिक है, ये कारों को ठीक करता है, ठीक है। तो जिनकी गाड़ी खराब होगी वो उसकी इज्जत करेंगे, यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो यार तुम, बड़े हमने अमेरिका में देखा है मोटर मैकेनिक की बड़ी इज्जत होती है, ठीक है। तो लोग आगे पीछे घूमते हैं मैकेनिक साथ में ना, कि भाई आप मेरी गाड़ी ठीक कर देंगे, इतना मुश्किल होता है वहां गाड़ी ठीक करवाना। बहरहाल उसी तरीके से कोई और है, इंजीनियर है, तो उसकी भी इज्जत है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर की कितनी इज्जत है पता है, डॉक्टर साहब की कितनी इज्जत है, क्यों डॉक्टर साहब की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, किस लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो किस चीज को ठीक कर रहे होते हैं जो आपके लिए बड़ी ज्यादा अहम, आपकी गाड़ी से भी ज्यादा अहम होती है, आपके घर में जो मशीनरी पड़ी हुई है मशीन पड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, या उससे भी ज्यादा अहम चीज आपकी बॉडी है, ठीक है ना। तो जो बॉडी को ठीक करेगा और जो आपकी बॉडी के बारे में आपको अच्छे अच्छे मशवरे देगा, तो उसकी अहमियत भी बॉडी की अहमियत जितनी ही होगी ना, जिस तरह गाड़ी की अहमियत गाड़ी को ठीक करने वाले की अहमियत गाड़ी की अहमियत की जितनी होगी, ठीक है ना। तो इज्जत का फर्क होता है, अहमियत से इज्जत मिलती है, तो इज्जत का फर्क होता है। दीन का जो एक्सपर्ट होता है ना उसमें और दूसरे एक्सपर्ट्स के अंदर यही फर्क होता है, इज्जत का फर्क होता है, ठीक है, इज्जत का फर्क होता है। पैसों का फर्क नहीं होता, पैसे उसको भी मिलते हैं, पैसे इसको भी मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना उसने अच्छा इल्म हासिल किया, कितना उसने अच्छा इल्म के ऊपर जो है वो अमल किया, ठीक है ना। इसको भी पैसे, लेकिन जो इज्जत इसको मिल रही होती है ना, ये इज्जत जो है ये किसी दूसरे को नहीं मिल रही होती, ये किसी दूसरे के, हत्ता के इवन मेडिकल डॉक्टर को वो इज्जत नहीं मिल सकती जो कि एक अच्छे आलिम दीन को इज्जत मिलती है, ये फर्क है खाली, ठीक है। तो क्यों ये फर्क क्यों है, उसकी वजह ये है कि जो दुनिया वालों की इज्जत करते हैं ना लोग, क्यों करते हैं इज्जत, क्योंकि वो उनकी किसी दुनिया की चीज को फिक्स कर रहे होते हैं, दुनिया की चीज को अच्छा बना रहे होते हैं, है ना भाई। आपके यहाँ जो है वो मोबाइल ही का मॉडेम खराब हो जाए तो आप मोबाइल ही वाले की भी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आगे मोबाइल के मोडेम को ठीक करेगा, है ना भाई। लेकिन जैसे ही वो ठीक करके जाता है बस खत्म, बस अब तो आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं, अब उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। उसी तरह गाड़ी वाले की इज्जत करते हैं क्योंकि वो आपकी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, जिस्म को ठीक करने वाले डॉक्टर साहब की इज्जत कर रहे होते हैं क्योंकि जिस्म को ठीक कर रहा होता है, लेकिन दिल से उनकी इज्जत जो है ना वो कोई नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। उनके अपने इस पेशे की वजह से इज्जत कर रहे होते हैं, दिल से कोई इज्जत नहीं कर रहा होता, जबकि जो आलिम बा अमल होता है यानी जिसने अपने इल्म पर भी मेहनत करी होती है और अपने अमल पर भी मेहनत करी होती है ना, उसकी जो है वो अल्लाह की मखलूक दिल से इज्जत कर रही होती है, ठीक है ना। और ये इज्जत जो है वो अल्लाह ताला भी दिलों में डाल रहे होते हैं। और बहुत ही कॉमन सेंस की भी बात है कि भाई उसका वो जो इल्म आपको दे रहा है उस इल्म से आपको क्या फायदा हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है? आपको अपने घर में फायदा हो रहा है, फैमिली सिस्टम को अच्छा बनाने में दीनी उलूम से फायदा होता है, ठीक है ना। खानदान के दरमियान मोहब्बत किससे आती है? दीन से आती है। तो हम खानदान से शुरू करते हैं, ठीक है। और वो आपकी दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी का बायस बन रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो कब्र की जिंदगी होती है उस कब्र की जिंदगी में वो कामयाबी का सबब बन रहा होता है। और फिर उसके बाद जो हमेशा हमेशा की आखिरत की जिंदगी होती है उसके अंदर वो आपको गाइड कर रहा होता है कि भाई कैसे तुम्हारी आखिरत संवरेगी, कैसे तुम जहन्नुम से बचोगे, कैसे तुम जन्नत हासिल करोगे। दीनी उलूम यही है ना, और क्या दीनी उलूम? उसमें आपको कोई पतंग उड़ाना तो नहीं सिखाया जा रहा था, पतंग ऐसे उड़ाओगे या बिल्डिंग ऐसे बनाओगे या गाड़ी को ऐसे ठीक करोगे या अपनी जो है वो हड्डी को ऐसे जो है वो जोड़ोगे, दीनी उलूम ये सब नहीं सिखाते। दीनी उलूम क्या सिखाते हैं? आखिरत कैसे बनाओगे, राइट। तो ये जो इल्म दीनी उलूम के एक्सपर्ट के पास होता है ये चूंकि सबसे ज्यादा अहम इल्म होता है और इसकी रीच जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए होती है, इसी वजह से जो दीनी उलूम के आलम की इज्जत करते हैं ना वो दुनिया की किसी रीजन की वजह से नहीं कर रहे होते, वो खालिसतन आखरत की वजह से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं या अल्लाह की वजह से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। ये इज्जत किसी दूसरे प्रोफेशन के ऊपर नहीं है, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। इधर भी क्या होता है, कारें बहारें रोटियां बोटियां, इधर भी अल्लाह ताला देते हैं इधर भी अल्लाह ताला देते हैं, राइट। डॉक्टर भी जो है ना वो अपनी मेहनत से नहीं कारें बोटियां और रोटियां और बोटियां बना का, वो भी अल्लाह ताला उसको उसके डॉक्टरी प्रोफेशन के बहाने से दे रहे होते हैं। इंजीनियर को अल्लाह ताला रिस्क जो है वो उसके इंजीनियरिंग के वास्ते से दे रहे होते हैं और आलिम दीन को उसका रिस्क जो है वो उसके इल्म दीन की वजह से दे रहे होते, ठीक है। लेकिन ये फर्क होता है, इज्जत का फर्क होता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो मुकम्मल हुई। हजरत मौलाना मौलाना सार कासमी साहब, मौलाना सार कासमी साहब से हमारा क्या रिश्ता है? नहीं? ना मैं उनका कोई रिश्तेदार हूं, ना जो है वो मेरा उनके साथ जो है वो कोई दफ्तर का ताल्लुक है, ना जो है मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं जिस स्कूल से ये पढ़े हैं, ठीक है ना। ना कोई और मेरा उनके साथ ताल्लुक है, सिर्फ क्या ताल्लुक है, दीन की वजह से इज्जत का मोहब्बत का ताल्लुक है, मेरा भी और आप सबका भी, ठीक है। और तो वो कोई हमें और क्या क्या चीज हमें ऑफर कर रहे हैं, राइट। क्या चीज वो हमें दे रहे हैं? दीन का इल्म दे रहे हैं ना, राइट। जिससे क्या होगा, हमें आखिरत का फायदा होगा, ठीक है। इस वजह से दिल से इज्जत करते हैं हम उनकी, उसी तरीके से हर एक की, जिसने हजरत जी की इज्जत करी उनके दीन की वजह से वो कामयाब हो गया। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने हजरत जी की इज्जत किस वजह से करी, क्योंकि वो साइंसदान हैं, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना जानते हैं। मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूं, उनको ना दीन मिला ना दुनिया की इज्जत मिली, उनको नहीं मिला कुछ भी, हजरत जी से वो फायदा नहीं उठा सके क्योंकि उन्होंने गलत रीजंस की वजह से हजरत जी से इज्जत करी, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। और हम अगर खुद आलिम दीन नहीं बन रहे हैं तो बेशक कोई फोर्स नहीं है किसी को, नहीं अब तो जब आलिम दीन बनना है आप हजरत चाहते हैं कि हम सब जो है आलिम दीन बनना शुरू करें, नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन गलत फहमियां हमारे जहनों में नहीं होनी चाहिए, चाहे हम इंजीनियर बने ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जी इंजीनियर बनने का मतलब है कि मैं इंजीनियर बनकर निकलूंगा अब लोग जो है ना मुझे पैसे पैसे भेजना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर, है। या मैं जो हूँ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलूंगा तो अब जो है मेरे पर बरसात होनी शुरू हो जाएगी, माल और दौलत की बरसात होनी चाहिए, एकदम से मुझे एक ऊपर से घर आके जमीन पे आ जाएगा ऐसा बड़ा सा घर, राइट। वो मुझे ऊपर से लैंड हो जाएगा मेरे ऊपर और मैं उस घर के अंदर हूँ और फिर मेरी अच्छी सी गाड़ी जो है मेरे लिए आप इंतजार कर रही होगी, मैं उस अच्छी गाड़ी में बैठूंगा क्योंकि मैं इंजीनियर बन गया हूँ, या कुछ साथी हैं बेवकूफ किस्म के, हैं हम बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे, राइट? तो बिजनेस करेंगे ना, तो वो समझते हैं कि जी बिजनेस करेंगे उधर से उनको घर मिलेगा, जैसा वो समझ रहे हैं कि किसी बिजनेसमैन को बड़ा अच्छा सा घर मिला हुआ, उनको भी ऐसी घर तोहफे में मिलेगा, उनको भी वैसी गाड़ी जो है ना वो किसी अंकल के पास उन्होंने देख ली है, वो समझ रहे हैं उनको भी ऐसी गाड़ी तोहफे में मिलेगी। नहीं, अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं हुआ ना, अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं हुई, और अगर आप इंसान जिसको हजरत जी फरमाया करते थे बंदे दे पुत्र नहीं बने, अगर आप बंदे दे पुत्र नहीं बन रहे ना, आपको ठुड्डे मिलेंगे ठुड्डे, और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेंगे? ठुड्डे मिलेंगे, राइट? और कख नहीं मिलेगा उसके अलावा, सही? बंदे दा पुत्र बनना ये असल चीज है, प्रोफेशन का कोई मसला नहीं है। बेशक बने आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप आलिम दीन ना बने, आप कुछ और बन जाए, बंदे दा पुत्र नहीं बने तो आप जलील और ख्वारी होते रहेंगे और इधर से उधर के धक्के ही खाते रहेंगे, ठीक है ना? उस वक्त अब्बा की दौलत भी काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है? बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं, हमारे बस में सिर्फ बोलना है, ठीक है? तौफीक अल्लाह के बस, अल्लाह ही दे सकता है, हम नहीं दे सकते। अल्लाह ताला अकल और समझ अता फरमाए। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह, क्या लिखा था इन्होंने, एक भाई भाई हो यार, दीन के इल्म से आखिरत और दुनिया दोनों मिलती है, इज्जत मिलती है दुनिया के इल्म से, सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलती है, वो भी हकीकी इज्जत नहीं होती है, बस लोग आपकी दुनिया की वजह से आपकी इज्जत कर रहे होते हैं। दोबारा समझा दें प्लीज, आप तो अगले हफ्ते सुन, आपको समझाने की जरूरत क्या है भाई? दे आपको तो बड़ा डबल सवाल मिल रहा है, आपको फिक्र के नहीं किया चले। अच्छा, ओह बहुत देर हो गई, कौन से हमने असर की नमाज पढ़नी है?
ओके।